नमस्कार। चाणक्य नीति के 8वें अध्याय में आपका स्वागत है। असंतुष्ट ब्राह्मण, संतुष्ट राजा, लज्जा रखने वाली वैश्या, कठोर आचरण करने वाली गृहिणी, ये सभी लोग विनाश को प्राप्त होते हैं। उस यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं जिसके उपरांत लोगों को बड़े पैमाने पर भोजन ना कराया जाए। ऐसा यज्ञ राज्यों को खत्म कर देता है। यदि पुरोहित यज्ञ में ठीक से उच्चारण ना करे तो यज्ञ उसे खत्म कर देती है। और यदि यजमान लोग को दान एवं भेंट वस्तु ना दे तो वह भी यज्ञ द्वारा खत्म हो जाता है। ऊख, जल, दूध, पानी, फल और औषधि, इन वस्तुओं को भोजन करने पर भी स्नान दान आदि क्रिया कर सकते हैं। एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं, लोभ के समान कोई रोग नहीं, दया के समान कोई गुण नहीं। काठ, पाषाण तथा धातु की भी श्रद्धा पूर्वक सेवा करने से और भागवत कृपा से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। क्या करना ऊंचे कुल का यदि बुद्धिमान ना हो? एक नीचे कुल में उत्पन्न होने वाला विद्वान व्यक्ति का सम्मान देवता भी करते हैं। क्रोध साक्षात यम है, तृष्णा नरक की ओर ले जाने वाली वैतारणी है, ज्ञान काम धेनु है, संतोष ही तो नंदन वन है, जल अपच की दवा है, जल चैतन्य निर्माण करता है, यदि उसे भोजन पच जाने के बाद पीते हैं, पानी को भोजन के बाद तुरंत पीना विष पीने के समान होता है। जो जल धरती में समा गया वो शुद्ध है, परिवार को समर्पित पत्नी शुद्ध है, लोगों का कल्याण करने वाला राजा शुद्ध है, वह ब्राह्मण शुद्ध है जो संतुष्ट है। जो लोग दिखने में सुंदर हैं, जवान हैं, ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, वो बेकार हैं, यदि उनके पास विद्या नहीं है, वो तो पलाश के फूल के समान हैं, जो दिखता तो अच्छा है पर महकता नहीं है। दीपक अंधेरे का भक्षण करता है, इसलिए काला धुआं बनाता है। उसी प्रकार हम जिस प्रकार का अन्न खाते हैं, माने सात्विक, राजसिक, तामसिक, उसी प्रकार के विचार उत्पन्न करते हैं। देवता ना काठ में, ना पत्थर में और ना मिट्टी में हैं, वो तो रहते हैं भाव में। इसी से यह निष्कर्ष निकलता है कि भाव ही सबका कारण है। नीति भ्रष्ट होने से सुंदरता का नाश होता है, हीन आचरण से अच्छे कुल का नाश होता है, पूर्णता ना आने से विद्या का नाश होता है, उचित विनियोग के बिना धन का नाश होता है। नीच वर्ग के लोग दौलत चाहते हैं, मध्य वर्ग के दौलत और इज्जत चाहते हैं, लेकिन उच्च वर्ग के लोग सम्मान चाहते हैं, क्योंकि सम्मान ही उच्च लोग की असली दौलत है। नीति की उत्तमता ही व्यक्ति के सौंदर्य का गहना है। उत्तम आचरण से व्यक्ति अतरोत्तर ऊंचे लोक में जाता है। सफलता ही विद्या का आभूषण है, उचित विनियोग ही संपत्ति का गहन है। यदि ज्ञान को उपयोग में ना लाया जाए तो वह खो जाता है। आदमी यदि अज्ञानी है तो खो जाता है। सेनापति के बिना सेना खो जाती है, पति के बिना पत्नी खो जाती है। यह धरती उन लोगों के भार से दबी जा रही है जो मांस खाते हैं, दारू पीते हैं, बेवकूफ हैं, वे सब तो आदमी होते हुए भी पशु ही हैं। यह बातें बेकार है वेद मंत्र का उच्चारण करना, लेकिन निहित यज्ञों कर्म को ना करना। यज्ञ करने लेकिन बाद में लोगों को दान देकर तृप्ति ना करना। पूर्णता तो भक्ति से ही आती है, भक्ति ही सभी सफलताओं का मूल है। वह आदमी अभागा है जो अपने बुढ़ापे में पत्नी की मृत्यु देखता है, वह भी अभागा है जो अपनी संपदा संबंधियों को सौंप देता है, वह भी अभागा है जो खाने के लिए दूसरे पर निर्भर है। विद्वान लोग जो तत्वों को जानने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि मांस खाने वाले चांडालों से हजार गुना नीचे हैं, इसीलिए ऐसा आदमी से नीचा कोई नहीं होता। विद्वान व्यक्ति लोगों से सम्मान पाता है, विद्वान उसकी विद्वता के लिए हर जगह सम्मान पाता है। यह बिल्कुल सच है कि विद्या हर जगह सम्मानित होती है। शरीर पर मालिश करने के बाद, शमशान में चिता का धुआं शरीर पर आने के बाद, संभोग करने के बाद, दाढ़ी बनाने के बाद, जब तक आदमी नहा ना ले वह चांडाल रहता है। हे विद्वान पुरुष, अपनी संपत्ति केवल पात्र को ही दे और दूसरों को कभी ना दे। जो जल बादल को समुद्र देता है वह बड़ा मीठा होता है। बादल वर्षा करके वह जल पृथ्वी के सभी चल अचल जीवों को देता है और फिर उसे समुद्र को लौटा देता है। इसी प्रकार चाणक्य नीति का 8वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।